ब्रजमानो यथा रवि दुरासदोति दुर्दर्शो भूतानां संभवुमहा स बिभ्रत् पौरुषं धामा ब्रजमानो यथा रवि दुरासदो अति दुर्दर्शो भूतानां संभूववा स बिभ्रत् पौरुषं धामा ब्राजमानो यथा रवि दुरासदो अति दुर्धर्षो भूतानां संभवुवः। स बिभ्रत् पौरुषं धामा ब्राजमानो यथा वै दुरासदो अति दुर्दशो भूतानां संभूवा माताजीस सभी व्रत पर शांधामा राजमानो यथा रवि दुरासदो अति दुर्दशो भूतानां संभव। शब्दार्थ सह वह वसुदेव विभ्रत धारण किए हुए पौरुषम परम पुरुष संबंधी धाम आध्यात्मिक तेज भ्राजमान प्रकाशमान यथा जिस तरह रवि सूर्य प्रकाश दुरासदा देखे जाने में भी अत्यंत कठिन अति दुर्दर्शा अत्यंत कठिनाई से पास पहुंचने योग्य भूतानाम समस्त जीवों में संभवुवा बन गया है निश्चित रूप से। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए। अतः उनकी ओर लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहां तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्धर्ष थे। तात्पर्य धाम शब्द महत्वपूर्ण है। धाम सूचक है भगवान के रहने का स्थान का। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही कहा गया है धामना स्वे सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान के धाम में भौतिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं रहता। जहां कहीं भी भगवान अपने नाम रूप गुण या परिकर के साथ रहते हैं वहीं तुरंत धाम बन जाता है। उदाहरणार्थ वृंदावन धाम द्वारका धाम मथुरा धाम क्योंकि इन स्थानों में भगवान का नाम यश गुण तथा परिकर सदैव उपस्थित रहते हैं। इसी तरह यदि भगवान किसी को कुछ करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं तो उसका हृदय धाम बन जाता है और वह इतना शक्तिशाली बन जाता है कि न केवल उसके शत्रु अपितु सारे लोग उसके कार्य कलापों को देखकर चकित रह जाते हैं। दुर्धर्ष होने के कारण उसके शत्रु चकित हुए बिना नहीं रहते, जैसा कि दुरासदो अति दुर्दर्शो शब्दों के द्वारा बतलाया गया है। पौरुषम धाम की व्याख्या अनेक आचार्यों ने की है। श्री वीर राघव आचार्य कहते हैं कि ये शब्द भगवान के तेज के सूचक हैं। विजय ध्वज का कहना है कि ये शब्द विष्णु तेज के सूचक हैं और सुखदेव इसे भगवत स्वरूप कहते हैं। वैष्णव तोषणी के अनुसार ये शब्द परमेश्वर के तेज के प्रभाव को सूचित करते हैं तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये भगवान के प्राकट्य के सूचक हैं। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये जो दशम स्कंध है इसमें एक्सप्लिसिटली भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो पहले बाकी जो स्कंध है उसमें भगवान के इनकार्नेशंस उनके अवतारों का वर्णन है और इस स्कंध में जो इन सब अवतारों के स्रोत हैं स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनकी लीलाओं का वर्णन आता है। तो यहाँ दशम स्कंध के पहले अध्याय में चर्चा हुई, थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया और इस चैप्टर में चैप्टर टू में जो देवी देवता है वो भगवान के आने से पहले उनकी आराधना कर रहे हैं, किस प्रकार भगवान अभी अवतार लेने वाले हैं ना, स्वयं अवतारी हैं मगर फिर भी अवतार लेकर आते हैं, तो उस समय क्या परिस्थितियां हैं, तो उसका वर्णन आ रहा है। तभी यहां पे वर्णन आ रहा है, व्यासदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण जो हैं उनके जो पिताजी हैं वसुदेव जी उनके हृदय में स्थापित हो चुके हैं और आगे चल के बताएंगे कि वसुदेव जी के हृदय से कहाँ जाएंगे, वो देवकी के हृदय में जाएंगे और फिर उनके हृदय से उनके गर्भ में जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान आविर्भाव लेंगे, अपना जन्म लेंगे और आगे चलकर जन्म कहाँ पे होता है उनका, एक जेल में होता है। तो कई बार लोग बोलते बोले जेल में ना आपके कृष्ण का बर्थ जेल में हुआ, ये कैसे भगवान है, किसी का जेल में जन्म होता है, यहाँ पे है कोई ऐसा विराला निराला अलबेला व्यक्ति जिसका जन्म जेल में हुआ हो, है ना। ठीक है भैया हॉस्पिटल में नहीं हुआ तो घर में हो जाएगा ना? मगर जेल में तो बड़ा ही अजीब सा है, बड़ा ही अद्भुत है। तो प्रश्न आता है कि भगवान ने जेल में जन्म क्यों लिया, है ना, कोई बता सकता है कि दुनिया में और कोई जगह नहीं मिली उनको ना, जाके एक जेल में जाके मतलब कितनी विषम परिस्थितियां होती, कितने ही अपराधी लोग रहते हैं वहां पे जेल में और वहां पे जाके भगवान अपना जन्म, वो भगवान जो क्या है त्रिभुवन के स्वामी हैं, सारे लोगों के ईश्वर हैं, जगन्नाथ हैं, वो जाके एक जेल में जन्म हो रहा है, सोचिए। तो ऐसा क्यों है, तो इसका केवल एकमात्र उत्तर है कि भगवान की इच्छा है ना? भगवान की इच्छा है कि मेरे को जेल में जन्म लेना है तो ठीक है ना? अब जो भगवान है वो स्वराट है, इंडिपेंडेंट है, तो जहां उनकी इच्छा होगी वो जन्म लेंगे। अब मान लीजिए उनकी इच्छा होती कि भैया मेरे को स्विट्जरलैंड में लेना है ना, ईफिल टावर के पास थोड़ा सा, तो वो धाम हो जाता, क्योंकि जहां पे भगवान जन्म लेते हैं वो किस स्थिति क्या, उस स्थान क्या बन जाता, धाम बन जाता। बट कृष्णा चोजन, कृष्ण ने क्या चुना कि हाँ ये जो वृंदावन धाम है इसके अंदर जो मथुरा है इसके अन्दर जो जेल है मुझे वहां पे जन्म लेना है। तो काफी दुर्भाग्यशाली जो लोग होते हैं वो भगवान के आने और जाने को समझ नहीं पाते। भगवद्गीता के चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा ते अहम् पुनर्जन्म नेति मामेति सर अर्जुन। क्या बोलते हैं कि कोई केवल इतना जान ले कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, बस इतना, तो क्या होगा, वो ये देह त्याग देगा, मेरे धाम में आ जाएगा और दोबारा भौतिक संसार में नहीं आएगा, ये गारंटी दे रहे भगवान। केवल कितना जानने मात्र से मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य है, केवल इतना। मगर इतना आसान नहीं है, अगर आसान होता तो सब लोग कर लेते ना? केवल जानना कि भगवान का जन्म और भगवान का कर्म दिव्य है, साधारण जनता को समझ नहीं आती कि भगवान क्या है, वो तो दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, इस भौतिक जगत के नहीं है। अगर वो आते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार आते हैं और जाते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार जाते हैं। मगर यहाँ के साधारण लोग क्या बोलते हैं, भगवान का जन्म हुआ फिर क्या बोलते हैं, भगवान की मृत्यु हुई। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं सूर्य का, सूर्य क्या होता है, उदय होता है और फिर शाम को अस्त हो जाता है। मगर जब सूर्य सूर्य उदय होता है तब उसको नहीं बोलते कि सूरज का जन्म हो गया, और शाम को अस्त होता है तो हम नहीं बोलते सूर्य क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, परलोक सिधार गया सूर्य, स्वर्ग लोक चला गया सूरज, ऐसे बोलते हैं क्या? सूर्य के उदय होने से पहले भी सूर्य था, सूर्य के अस्त होने के बाद भी सूर्य है, मगर हमारी आंखों से ओझल है, हम नहीं देख पा रहे हैं, हमारी इनेबिलिटी है, हमारी अयोग्यता है कि हम सूर्य को नहीं देख पा रहे, मगर सूर्य फिर भी है। तो इसी प्रकार भगवान के इस धराधाम में आने से पहले भी भगवान है, और भगवान के धराधाम से जाने के बाद भी भगवान है, और हमारी योग्यता नहीं कि हम उनको देख पा रहे हैं। जैसे कई बार लोग क्या टीवी में सुनते हैं ना, आजकल बड़े सारे स्पिरिचुअल चैनल आते हैं, तो उसमें अलग अलग गुरुजन, सो कॉल्ड गुरुजन बताते हैं। तो एक बार हम सुन रहे थे, तो पंजाबी में थोड़ा प्रवचन चल रहा था, जानते हैं आप लोग पंजाबी, कितने लोग समझ पाते हैं? तो बोले थे, बोले आ देखो जो आंदा आएगा सो जानदा भी आएगा, मतलब जो आता है जानदा भी, मैं आया हुआ तो तुसी मैंने भी जाना पाएगा, तुसी आए हो तो तानो भी जाना पाएगा, गल सही है कि नहीं? मैं आया हूं तो मुझे भी जाना पड़ेगा, जिसने जन्म लिया है तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा, और आप आए हो तो आपने शरीर लिया है आपको छोड़ना पड़ेगा। तो देखो रावण आया सीगा तो रावण नु जाना पाया, तो राम आए सीगे राम नु भी जाना पाया। अरे भटूरे, राम और रावण में कोई फर्क नहीं है क्या? है ना कि राम रावण आया था उसको जाना पड़ा, ठीक है, मगर श्री राम आए थे उनको जाना पड़ा, तो राम और रावण में हम सोच रहे कोई भेद नहीं है? भेद बहुत है, नाम में खूब भेद है। जैसे हम लोग अपना नाम रखते हैं, पहले होता था ट्रेडिशन, आप कोई भी डायरेक्टरी खोलिए, टेलीफोन डायरेक्टरी खोलिए, तो सब भगवान के नामों से भरी होती थी ना, राधे श्याम, श्याम गोविंद, गोपाल है ना, रामू श्यामू, नाम थोड़ा सा मॉडिफाई भी होता था, तो भगवान के नामों में रहता थोड़ा सा, पेंडुलम की तरह इधर उधर होता था, मगर फोकस भगवान के नाम में होता था। मगर कभी आपने सोचा कि डायरेक्टरी खोली और फिर उसमें निकला, अरे क्या नाम है, बड़ा स्पेशल नाम है, रावण शर्मा है ना, कुंभकर्ण गुप्ता, ऐसे नाम होते किसी के है ना, दुर्योधन कुमार, बोले यार नाम में कुछ तो गड़बड़ है यार, ना नाम में लग गया, बोले अब शादी हो रही है कि दूसरे का नाम क्या है ना, तो बोले ये तो कंस है ना, कंस गुप्ता, बोले यार गड़बड़ है भैया, किसी और से देख लो, हम तो नहीं कर सकते ना। तो नाम में बड़ा बहुत गुह्यतम चीजें छुपी हैं। तो जिस प्रकार भगवान में और जो राक्षस है उसमें भेद है, उसी प्रकार हम में और भगवान में भी भेद है। तो जिस प्रकार हम आते हैं तो भगवान उस तरह नहीं आते, भगवान किसी भी तरह आ सकते हैं। कल हमने आपने लीला सुनी होगी, कहां से आए थे भगवान? नरसिंहदेव खंभे से आए ना। भगवान क्या कोई भी जगह चुन सकते हैं अपना आविर्भाव करने के लिए, मगर जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति जाता है ना तिहाड़ जेल में जाता है ना, तो जेलर से जाके पूछता है, बोले कौन है यहाँ पे, तो सबसे खतरनाक कैदी कौन है, बोले ये है ना, इसने क्या किया था, 14 छुरियां चलाई थी, इसको पता नहीं था कि जो छुरी है चाकू है वो सब्जी काटने के लिए होता है, ये लोगों को मारने लग गया था उसे। बोले अच्छा, इधर बुला उसको, तो बोले बड़ा बदतमीज आदमी है, 14 लोगों को मारा इसने। मगर जेलर बोलता है, बोले अभी क्या है ना, बड़ा अच्छा व्यक्ति बन गया है ना, ये इस्कॉन वाले आए थे, तिहाड़ जेल में आते रहते हैं, बोले इसको माला दे गए, ये हरिनाम भी करता है अब है ना, सुबह सुबह उठ के जल्दी उठ जाता है, हरे कृष्णा करता है। बोले अच्छा, बोले फिर क्या करो इसकी, वैसे बताओ सजा कितनी है? बोले क्या बताएं, 14 मर्डर है तो 14 जन्मों की इसको फांसी होनी चाहिए, इस जन्म में तो एक बार ही दे सकते हैं हम। तो बोले इतना इसका पाप है, अपराध है। बोले ऐसा करो यार, इसको 2 महीना वॉच पे रखो, आज 15 अगस्त है, इसको माफ कर दो यार, आज मेरा दिल खुश है इससे, ये माला करता है, इसको छोड़ दो। तो जेलर बोलता छोड़ दे सर इसको, बोले हाँ बिल्कुल छोड़ दो। तो वहां पे आता है ना, तो राष्ट्रपति किस लिए आ रहा है वहां पे, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो अपराधी हैं उनका उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। मगर कई बार आसपास के लोग सोचते हैं वहां पे जो दूसरे अपराधी हैं, बोले देखो ना ये भी 420, हम 420 ही करके आए तो हम भी अंदर आए, ये भी 420 ही करके आया ये भी अंदर आया, क्योंकि जेल में जो भी आता है कौन होता है, वो 420 ही तो होता है, तो अपने ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इसी प्रकार क्या करते हैं, भगवान भी आते हैं इस धराधाम पे, भौतिक संसार में आते हैं, है ना। जन्माष्टमी का दिन है ना उन्होंने चूज किया, गौर पूर्णिमा का दिन उन्होंने चूज किया, नरसिंह चतुर्दशी का दिन उन्होंने चूज किया कि इस दिन मैं आऊंगा। कहां पे आते हैं, भौतिक संसार की जेल में आते हैं। फिर यहां से आते हैं, यहाँ की जो जेलर है माया देवी से पूछते हैं, बोले ये सबसे खतरनाक व्यक्ति कौन है, बोले ये है। बोले क्या इसका गुनाह है, बोले क्या करे, इतनी इंद्र तृप्ति करता है, जन्मों जन्मों तक ही कभी सुअर की योनि में भी चला गया, कुत्ते की योनि में चला गया, मगर उसके बाद भी सुधरा नहीं, है ना। अभी मनुष्य योनि में मिल गया मगर काम हरकतें इसकी कुत्ते सुअर जैसी हैं। बोले फिर क्या करें, कितना इसका अपराध है, बोले अभी तो इसको 10 करोड़ है ना 85 लाख जन्म है इसके अभी यहाँ पे भौतिक संसार में, उसके बाद इसका कुछ हो सकता है। बोले अच्छा इतना। भगवान बोलते हैं फिर क्या करता है, बोले हाँ हाँ सुबह उठ के क्या करता है, हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कर दिया इसने। अभी इंद्र तृप्ति करता है, पाप करता है, मगर सुबह उठ के हरे कृष्णा करता है। फिर भगवान बोलते हैं क्या करो इसको ना, ऐसे करो 2 जन्म लो इसके, 2 जन्म में इसको मेरे धाम भेज दो, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरा बर्थडे है, इसको 2 जन्म बाद निकाल दो। तो भगवान भी किस लिए आते हैं, यहाँ के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। मगर साधारण लोग क्या सोचते हैं, मैं भी 420, ये भी 420, क्योंकि जो इस भौतिक संसार की जेल में आता है कौन है वो 420। तो इस प्रकार जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो जान नहीं पाते हैं कि भगवान का आने का मकसद क्या है, क्यों आते हैं भगवान। तो भगवान का आने का केवल एक ही उद्देश्य है, प्राथमिक उपदेश जो उद्देश्य है, प्राइमरी रीजन, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो आने का केवल एक ही उद्देश्य है जो भगवान गीता में बताते हैं, परित्राणाय साधु नाम। और उसके बाद सेकेंडरी रीजन भी बताए हैं, विनाशाय च दुष्कृताम। वैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। अब तो किसी को भूकंप को भेज दो, है ना, तो हिले जाएंगे सब लोग, बाढ़ भेज दो, है ना, सूखा कर दो, अपने आप ही बेचारे हालत खराब हो जाएगी यहाँ की। दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, मगर केवल और केवल अपने जो भक्त हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए। प्रहलाद आह्लाद दायने, ना प्रहलाद को आह्लाद देने के लिए, आनंद देने के लिए नरसिंहदेव आए। इसी प्रकार उनके जितने भी भक्त हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए भगवान इस धराधाम पे आते हैं और उन लीलाएं करते हैं उनके साथ। तो हमारा जीवन का सबसे उत्तम कोटि का प्रश्न होना चाहिए, टॉप मोस्ट क्वेश्चन, कि ये समझना कि भगवान की लीलाएं दिव्य कैसे हैं। दैट्स इट। अगर ये जान लिया ना हमने, ये जो लाइफ स्पैन है हमारा, तो परफेक्शन हो जाएगा हमारे। मगर हमारे प्रश्न तो कुछ और होते हैं, हमारे प्रश्न केवल सीमित रहते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सोना है, कैसे सोना है ना, कैसे इंद्र तृप्ति के साधन बढ़ाने हैं, केवल यही प्रश्न। सुबह से उठने से लेके रात के सोने तक हमारे मन में केवल यही प्रश्न चलते रहते हैं कि कैसे भोगने की इच्छा को सेटिस्फाई करूं मैं, कैसे इंद्र तृप्ति को मैं शांत करूं अपने, यही चलता रहता है बस। तो ब्रह्म सूत्र बताता है कि सबसे उच्चतम कोटि का प्रश्न क्या है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा करना, भगवान को जानना, अपने आप को जानना और मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है उसको जानना, यह उच्चतम कोटि का प्रश्न है। तो श्रीमद् भागवतम में यहां बताया गया है ना कि भगवान का जो जन्म है अति दिव्य है। तो इतनी चर्चा हो रही है, देखिए अभी तो भगवान का जन्म नहीं हुआ, ये पूरे दूसरे अध्याय में भगवान के आने की अभी चर्चा हो रही है, आया नहीं है भगवान, तो पूरा चैप्टर उसमें चर्चा हो रही है। फिर आगे चलकर देवी देवता प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान देवकी के गर्भ में अभी, और वहीं पे देवी देवता पहुंच रहे हैं और खूब प्रार्थनाएं कर रहे हैं उनको ना। तो ये भगवान के देखिए कितना दिव्य है उनका उनका जन्म ही केवल। मगर भौतिक संसार में जिसके जन्म होता है तो कोई उस आग का विषय नहीं है वो ना। हम लोग तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं बर्थडे, मगर कोई बहुत बड़ा उस आग का विषय नहीं है ना। यहाँ पे बताया गया है, कपिल देव बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि भौतिक संसार में तो कर्म के अनुसार सब कुछ चलता है ना, कर्मणा देव नेत्रेना, कि अपने कर्मों के अनुसार है ना एक व्यक्ति एक बद्ध जीव को दोबारा जन्म लेना पड़ता है, एक माता के गर्भ के अंदर उसको जाना पड़ता है। ही इज फोर्स्ड टू गो इनसाइड द वूम ऑफ अ मदर, ना अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, मगर जो उसके कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको जाना ही पड़ेगा ना। न्यूटन बाबा भी बोल के गए थे ना, उनका न्यूटन का थर्ड लॉ था, जैसा करोगे सरल भाषा में वैसा भरोगे, जैसे आपने किया है तो जैसे कार्य किए हैं तो उसके लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा माता के घर में। तो हमारा जो जन्म है वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का विषय नहीं है। हमारे पास बर्थडे मनाते हैं, मगर बर्थडे के साथ क्या हो रहा है ना, सब कुछ गल रहा है हमारा ना। शंकराचार्य बताते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम। जैसे ही एक नया साल आ गया आपका है ना, बर्थडे का, हम बोलते हैं आई एम 30 years old, तो पहली बार तो बोलते हैं आई एम 30 years old, मतलब 30 साल के बूढ़े हो चुके हैं आप, तैयार रहिए, इतना तो बुढ़ापा आ चुका है आपके ऊपर है ना। और क्या क्या हो रहा है उस बुढ़ापे के साथ, अंगम गलितम, धीरे धीरे अंग क्या है गल रहे हैं, होता है ऐसा ना। कई बार अब जो शक्ति पहले थी अब कम होती जा रही है। और क्या हो रहा है, पलितम मुंडम, बाल धीरे धीरे पहले सफेद होते हैं और सफेद होने के बाद टपक जाते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार गायब हो जाएंगे। इतना मर्जी आपने है ना हेयर ऑयल लगाया हो, फर्स्ट क्लास बड़े बड़े अच्छे अच्छे शैंपू लगाए हो, आप ही के बाल हैं, एक दिन आपका साथ छोड़ के जाएंगे, पलितम मुंडम। और क्या होगा, दश नवी ही नम जातम टुंडम, दश नवी ही नम, जिन ना जिन जबड़ों के साथ जिन दांतों के साथ बत्तीसी दिखाते थे हम लोग, एक दिन वो दांत टूट के चले जाएंगे, एक दिन खारे होंगे निकल जाएगा, अरे बाहर आ गया। तो धीरे धीरे एक एक करके ये सारे दांत आपका संग छोड़ के जाएंगे। और क्या होगा, वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम, थोड़ा बूढ़े होंगे तो डंडा का सहारा लेके चलना पड़ेगा, वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम, तो ये आपका आभूषण हो जाएगा, वो जो दंडा है उसी के सहारे चलेंगे। मगर उसके बाद भी तदापि न मुंचती आशा पिंडम, उसके बाद भी जो इच्छाओं के जो डिजायर्स है, जो पिंड है, वो खत्म होने वाला नहीं है। तदपि न मुंचती, वो कभी खत्म नहीं होगा, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होने वाली। ये सब कुछ शरीर जर्जर होता रहेगा, शरीर साथ छोड़ता जाएगा, मगर आशाएं इच्छाएं कभी कम नहीं होंगी ना। ये बताया गया है एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 30,000 इच्छाएं कर लेता है, 30,000 desires, पता नहीं पूरी कितनी होती है, मगर इतनी इच्छाएं हमारी मनी मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में हमेशा चलती रहती है हमारे मन के अंदर। और आगे बताते बालस तावत क्रीड़ा सकता, तो बाल्यावस्था तो हमारी निकल जाती है खेलने में, कभी कंचे खेलने में, कभी गुल्ली डंडा खेलने में, कभी क्रिकेट खेलने में, बचपन तो इसी में निकल गया। और फिर जब थोड़े से बड़े हुए, थोड़ी सी अकल आई, मगर अकल ज्यादा आ गई उसमें, तो क्या हो गया, तरुणास्तावत तरुणीय सकता, जब तरुणावस्था में आए तो सामने सामने तरुणों की चहल पहल से हिलने डुलने लगे, तो जैसे उनके पांव हिलते थे है ना सामने देख देख के, तो हमारे भी मन डोला डोला होता था उस समय ना। तो सामने खिड़की खोलती थी तो यहाँ की दिल की खिड़की खुल जाती थी है ना, तो हालत खराब होती तब, तो तरुणास्तावत तरुणी सकता, तो उसी जो हमारी सारी इच्छाएं होती थी, सारा जो मन होता था उसी में लगा रहता था। यानी अभी आप किसी 10वीं क्लास के बच्चे का, 10वीं का छोड़िए 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे का फोन खोल के देख लीजिए, शर्म आ जाएगी आपको, बोले क्या करता है यार है ना, सारी डेटिंग ऐप्स होंगी उसके पास है ना, सारी फ्लर्टिंग ऐप्स होगी उसके पास, वो क्या कर रहा होगा, दूसरे जेंडर को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ वो कर रहा होगा, छोटा सा बच्चा है ना। और वो भी, उसको भी पता है कि तरुणी स्तावत तरुण आ सकता, कि दूसरे जो जो जेंडर है उसको कैसे अट्रैक्ट करना है, तो वैसा बन ठन के जाएगा। तो पूरा ये जो युवावस्था है किसमें निकल जाती है, दूसरों को आकर्षित करने में। और फिर क्या होता है, फिर बुढ़ापा आता है। और जब वृद्धावस्था आती है तब क्या होता है, वृद्धास्तावत चिंता सकता, तब चिंता मार लेती है, अब पुराना जो हुआ था उसकी यादें ताजा होने ले आती हैं, तो थोड़ा धूप में बैठे होंगे वहां मलहम लगा के, वहां पे गोडे दर्द हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो मलहम लगाएंगे वहां पे, संतरा खा रहे होंगे वहां पे है ना, और क्या कर रहे होंगे, पुरानी जो यादें हैं उसको ताजा कर रहे होंगे, हिस्ट्री में जा रहे होंगे है ना, तो याद कर रहे होंगे, बोले हाँ 1984 में हम ही गए थे, शिकारी थे जी हम ना, शिकार करने गए थे एक दिन हम, तो शिकार करने जब गए थे तो सामने देखा कि दो शेर हैं, शेर तो दो थे मगर हमारी बंदूक में एक ही गोली थी, फिर क्या करे, खूब दिमाग लगाया हमने, क्या किया, गोली एक है शेर दो है, तो बीच में हमने एक ब्लेड लगा दिया, तो यहां से एक गोली निकली और धाएं धाएं करके दोनों शेरों को मार दिया, वाह, खूब पुरानी जो यादें हैं उसको ताजा कर रहे हैं। वृद्धास्तावत चिंता आ सकता, फिर बच्चों की याद आ रही है, कितनी पास ना रात रात को जाग के इनको हमने पाला पोसा, खुद नहीं खाया इनको खिलाया, और आज क्या रंग दिखाया इन लोगों ने, हमें ही बोल रहे हैं अनाथ आश्रम जाने को, ना खाने को नहीं है, ना कुछ कोई दवाई लाने को नहीं है, अकेले पड़े हम लोग। तो उस चिंता में पूरा समय निकल जाता है। मगर उसके बाद भी परे ब्राह्मणी को अपी न सकता, उसके बाद भी हमारी इच्छा नहीं होती कि जाएं हम भगवान के पास और उनका भजन करें। इतना सब कुछ होने के बाद भी कभी भी इच्छा नहीं होगी, जागृत नहीं होगी स्वतः ही कि हमारी कृष्ण भक्ति जागृत हो जाए। तो इस प्रकार जो हमारा बर्थडे है, जो हमारा समय निकलता जा रहा है, उस पर हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मगर जब भगवान है आते हैं तो वो दिव्य रूप में आते हैं, अद्भुत रूप में आते हैं, अद्भुत कलाएं करते हैं। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां बताया जा रहा है इस श्लोक में कि भगवान ने प्रवेश किया वसुदेव जी के हृदय में, और उससे क्या हो गया, उनका जो पूरा शरीर है ना वो उज्जवल हो गया, वो प्रकाशमान हो गया, ऐसा तेज निकलने लग गया उनके पूरे शरीर से। क्यों? क्योंकि तो स्वयं भगवान स्थापित हो गए हैं। और आगे यहां पे बताया जा रहा है, स बिभ्रत पौरुषम धामा, कि ऐसे लग रहा है कि वो धाम बन गया है, क्योंकि जो भगवान का धाम है क्या, वो क्या है, वो स्वतः ही प्रज्वलित है ना। भगवान क्या लिखते हैं गीता में कि जो मेरा धाम है वो स्वतः ही प्रज्वलित है, न शशांक को न पाव का, ना यहां पे वो सूरज की आवश्यकता है, ना वहां पर चंद्रमा की आवश्यकता है, ऐसा मेरा परम धाम है। तो ऐसे ही जब भगवान अपने भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो वो भी क्या बन जाता है, वो धाम बन जाता है। तो धाम केवल वो नहीं है कि वो जो वृंदावन धाम है, मथुरा धाम है, द्वारका धाम है, धाम भी अपना एक्सपेंड करता है, एक्सपेंशन करता है, विस्तार करता है। तो यहां पे प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं किस किस रूप में धाम अपना विस्तार करता है। तो चार प्रमुख प्रकार से विस्तार करता है, नाम के रूप में, रूप के रूप में, भगवान के यश के रूप में, और भगवान के भक्तों के रूप में धाम अपना विस्तार करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर जहां पे भगवान का नाम लिया जाता है तो वो स्थान भी क्या बन जाता है, धाम बन जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा तो जहां पे भगवान का नाम लिया है वो जगह प्योरीफाई होने ले जाएगी, है ना, क्योंकि धाम अपने आप, नाम अपने आप में इतना पवित्र है कि हर चीज को वो क्लींस कर देता है। चेतो दर्पण मार्जनम, कि चित्रूपी दर्पण का मार्जन करने लग जाएगा, क्लींस करने लग जाएगा। धाम कभी अशुद्ध नहीं होता, सॉरी नाम कभी अशुद्ध नहीं होता, नाम हमेशा पवित्र रहता है। नेम इज ऑलवेज प्योरिफाइड एंड नेम इज नेवर कंटामिनेटेड, है ना, जैसे वर्णन आता ना, नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्व नाम नामिनो। तो नाम क्या है, पूर्ण शुद्ध हो, पूर्ण रूप में क्या है, शुद्ध है अपने आप में, और नित्य मुक्त हो, आपको मुक्ति दिलाने वाला है। क्यों, अभिन्नात्व नाम नामिनो, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, भगवान के नाम में और भगवान के जो स्वयं भगवान है उनमें, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए जैसे ही भगवान का नाम लिया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, भगवान की ही पूरी शक्ति आ जाती है ना, जितनी भगवान में शक्ति है वो सारी शक्ति किस में आ जाती है, भगवान में आ जाती है, भगवान के नाम में आ जाती है। जैसे सूर्य है ना, सूर्य और सूर्य की किरणें, दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि जो सूर्य में शक्ति है उतनी शक्ति सूर्य के किरणों में भी है, और सूर्य की किरणें जहां पे भी पड़ती हैं उसको क्या करती हैं, शुद्ध करती हैं, है कि नहीं। सूर्य की किरणें जहां भी पड़ेंगी दैट प्लेस विल बिकम प्योरिफाइड, तालाब में पड़ेंगी तो तालाब को प्योरीफाई करेंगी, समुद्र में पड़ेंगी उसको प्योरीफाई करेंगी, और केवल इतना नहीं, अगर वो मल में भी पड़ेगी ना, मल मूत्र में भी पड़ेगी सूर्य की किरणें तो उसको भी प्योरीफाई करेगी। जब सूरज पड़ता है उसमें तो मैं ये नहीं बोलते कि सूरज को शूशू लग गया ना, सूरज कंटामिनेट हो गया, बल्कि क्या बोलते हैं, वो प्योरीफाई हो गया, क्योंकि सूर्य अपने आप में शुद्ध है, तो वो शुद्ध चीज जहां पे पड़ती है तो वो चीज भी क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो ये नाम का महत्व है कि जो भी उसको लेगा तो प्योरीफाई हो जाएगा वो। और उसका वो उस स्थान क्या बन जाएगा, धाम बन जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने ये क्या किया, इस नाम को इतना फैला दिया ना, नाम तो पहले से ही था, हरि नाम जो है ये अनंत कोटि काल से अनंत भक्त ले रहे हैं, कुछ नया इजाद नहीं किया प्रभुपाद जी ने, मगर प्रभुपाद जी ने क्या किया, मंत्र उपासक की तरह इस हरि नाम को पूरे विश्व में फैला दिया। तो क्या होगा, पूरे विश्व धाम बन जाए। तो अभी आपको पता होगा इस्कॉन के मंदिर कहां कहां है, पूरे विश्व में फैले हुए हैं और हर जगह एक धाम है। तो प्रभुपाद ने बोला कि एक तो यहां पे वृंदावन है, तो प्रभुपाद जब वेस्ट में गए अमेरिका में बोले यहां पे न्यू वृंदावन बना दीजिए, नव वृंदावन, ये स्थान भी क्या है, वृंदावन है। यहां मायापुर है तो वहां पे न्यू मायापुर बना दीजिए, यहां पे जगन्नाथपुरी है वहां पे न्यू जगन्नाथपुरी बना दिया प्रभुपाद ने। तो हर जगह धाम है, क्योंकि धाम बन चुका है, क्योंकि वहां पे हरि नाम लिया जा रहा है। और ये हरि नाम क्या है, एक भव औषधि है, भव औषधि, औषधि क्या होता है, मेडिसिन। तो यहां पे जो लोगों को रोग है, भव रोग लगा हुआ है, भव रोग समझते हैं आप, भव रोग मतलब कि संसार को ही अपना मान बैठना, कि मैं तो यहीं रहूंगा जी, है ना, पंजाबी बाग में ये जो सेक्टर है यहां पे मेरा 4 मंजिले मकान है, ये मैं भरता हूं ना, मैं तो यहीं रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो आसक्ति है इस संसार से, भौतिक संसार से, तो ये है भव रोग। अभी मान लीजिए प्रवचन के बाद थोड़ा बाहर जाए तो पता लगा कि वहां पे भगवान का विमान आया हुआ है, पुष्पक विमान, और भगवान बैठे उसमें। बोलो कितने लोग हैं जी जाना चाहते हैं मेरे साथ, कितने लोग हैं जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं आप लोग? बोले नहीं जी नहीं, भगवान थोड़ा अभी वेट करना है, अभी ऐसे कैसे, अभी तो प्रशांत नहीं पाया मैंने, नोई तो बजा, अभी ऐसे कैसे चला जाऊंगा। बोले अभी तो सैलरी नहीं आई, 31 तारीख के बाद आना। बोले अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है, शादी का लड्डू तो चख लो एक बार, थोड़ा वेट करो, बाग में चलेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है। तो इस प्रकार अभी हमारी इच्छा नहीं है भगवान के धाम जाने की, क्यों, क्योंकि आसक्ति यहीं पे, यहीं पे रहने की इच्छा है हमारी। अब सोचिए कोई व्यक्ति टॉयलेट में जाए और टॉयलेट में जाके बोले बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, एसी भी लगा है, टीवी भी लगा है, लेट मी स्टे हियर, यहीं पे रहूंगा मैं, तो क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को, पागल ना, बाहर इतना बड़ा इसका महल खड़ा है, ये टॉयलेट में जाके रहने को चाह रहा है। तो ऐसे ही ये क्या है, भौतिक संसार क्या है, दिस इज नथिंग मोर देन अ टॉयलेट, है ना, एक शौचालय से ऊपर नहीं है। शौचालय में क्या करते हैं, अपना काम करिए, आगे बढ़िए, वो रहने का स्थान थोड़ी है। मगर हम लोग क्या बोले यहीं पर रहेंगे जी हम, है ना, यहीं पर बड़ा अच्छा लग रहा है, तो धरती पे बोझ बन गए हम, यहाँ पे यहीं पर रहने का हमने सोच लिया है। तो इसके लिए, इस भव रोग से छुट्टी पाने के लिए, इस रोग से मुक्ति पाने के लिए भगवान ने क्या किया, एक बहुत सुंदर औषधि दी उन्होंने, एनएचए औषधि माया नाशी पारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें पागी, है ना। भक्तिनो ठाकुर बताते हैं ना अपने सुंदर भजन में, जीव जागो, ये क्या औषधि है, इस माया से निकलने के लिए, इस भवरोग से निकलने के लिए एक बहुत सुंदर औषधि है। वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम। तो औषधि जब ली जाती है, दवाई जब ली जाती है, तो शुरू में अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी लगती है दवाई, है ना। आप मान लीजिए हॉस्पिटल में जाते हैं, वैसे तो आजकल के हॉस्पिटल भी होटल जैसे लगते हैं ना, एकदम दरवाजा खुलता है, सामने ऐसा लग रहा है रिसेप्शनिस्ट बैठी है, मेन्यू कार्ड दिखाती है, हाँ जी कौन सा रूम चाहिए आपको, 2 बेड वाला, 4 बेड वाला, सिंगल रूम चाहिए, एसी वाला, नॉन एसी वाला, टीवी वाला, बिना टीवी वाला, ना पूरा आपके मेन्यू कार्ड खोल देगी वहां पे, है ना। फिर उसके बाद पूछती, बोले कौन सी दवाई लेंगे, मीठे वाली, खट्टे वाली, नमकीन वाली, तो ऐसा लगता है कि पूरा होटल जैसा है वो। मगर जो दवाई है कभी भी शुरू में अच्छी नहीं लगती है ना, दवाई तो हमेशा कड़वी होती है, क्यों, क्योंकि बीमारी है ना, बीमारी के कारण दवाई अच्छी नहीं लगती। जैसे किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है ना, तो उसको मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको मीठा खिलाएंगे ना तो बड़ा चिड़ मचेगी उसको, बड़ा बिल्कुल नहीं खा पाऊंगा, मगर उसकी दवाई क्या है, उसको गन्ने का रस पिलाना पड़ेगा, पीलिया है तो गन्ने के रस से ही वो जॉन्डिस ठीक होगा, और जितना ज्यादा पिलाएंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा, मगर वो बिल्कुल नहीं पी पाता, अरे नहीं। तो ऐसे ही हम लोगों का भवरोग लगा हुआ है ना, उसी प्रकार का पीलिया है,
पी लिया मतलब पूरा तो पी लिया हमने, अच्छे से भू भू करके पी लिया हमने, मगर जब हरी नाम दिया बोला नहीं नहीं लिया था मेरे से, 16 बाला नहीं ले सकता मैं, बोलो कुछ भी करा लो माला नहीं कर सकता मैं, है ना। तो ये क्या है, भव रोग के लिए भव औषधि लेने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि बहुत रोग जितना ज्यादा है। इसलिए आप देखेंगे कि जब भक्त लोग चैंटिंग करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उस चैंटिंग में रस आने लग जाता है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि जब चैंटिंग नहीं करते तो बड़ा अजीब सा लगता है, बोले प्रभु जी आज अच्छा नहीं लग रहा, बोले क्यों, बोले माला नहीं हुई। कई बार पहले क्या बोलते थे, बोले प्रभु जी माला अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, और बाद में क्या होता है, बोले प्रभु जी माला नहीं हुई ना अच्छा नहीं लग रहा, एक बार माला हो जाए ना बस एक बार, तब पूरा धाए धाए पूरा दिन निकलता है हमारा अच्छे से। जिस दिन 16 माला सुबह एकदम हो जाते हैं ठाक करके, तब पूरा दिन ऐसे रोजी रोजी निकलता है, और अभी प्रभु जी मेरी माला नहीं हुई ना, मजा नहीं आ रहा मेरे को, क्या करें। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बीमारी ठीक हो रही है, जितने ज्यादा मेडिसिन लिए आपने उतनी आसानी उतनी जल्दी हमारा भव रोग ठीक होने लग जाएगा। तो प्रश्न आता है कि कौन सा नाम लेना चाहिए, तो नारद मुनि पूछते हैं ब्रह्मा जी से, बोले ब्रह्मा अब ये बताइए, अब तो कलयुग आने वाला है, क्या करा जाए। तो फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कली संत्र उपनिषद से बताते हैं कि अगर जीवात्मा को उद्धार करना है तो केवल एक ही उपाय है, है ना, क्या है, एक ही मंत्र है, अगर उसका उच्चारण किया जाए तो केवल कलयुग के लोग जो एक नंबर के थर्ड क्लास लोग हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो क्या बताते हैं, इति षोडश कम नाम नाम कली कलमश नाशनम नतः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि ये जो 16 अक्षरों का नाम है जो इसका उच्चारण करता है क्या होता है उसका, कली कलमश नाशनम, कली की जितनी कलमश है वो नष्ट हो जाएगी, कली के प्रभाव से वो मुक्त हो जाएगा। नतः परतरोपाय, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। और क्या बोलते हैं, बोले मैं नहीं बोल रहा, कौन बोल रहे हैं, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। किसके अलावा, इति षोडश काम, ये जो 16 अक्षरों का नाम है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा। और ये जो हरि नाम है केवल इसी भूलोक में उपलब्ध है, जिस स्थान पे हम हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या स्थान चुना, ये स्थान चुना, इसको धाम बनाया, क्योंकि यहीं पे हरि नाम सुलभ है, कहीं पे और हरि नाम ही हो सकता ना। जो देवी देवता है वो वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन आता है, क्या बोलते हैं, ना यत्र नारायण पाद पंकजा स्मृति प्रमुष्टा अतिशय इंद्रिय उत्सवा। क्या बोलते हैं, बोले हमारे जो जो देवी देवताओं के जो लोक है, देवलोक है, वहां पे तो क्या होता है, अतिशय इंद्रिय उत्सव, कि प्रतिदिन वहां पे तो अतिशय मतलब एग्रेसिव एक्सेसिव, इंद्रिय मतलब सेंस, उस इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन, उत्सव मतलब फेस्टिवल, कि हमारे यहां तो एवरीडे सेंस ग्रेटिफिकेशन का फेस्टिवल होता है, तो हम यहां क्या पे हरि नाम लेंगे, पॉसिबल है। अब सोचिए वहां पे 10 अप्सराएं आपके सामने नृत्य कर रही है, मेनका है, रंबा है, इधर उधर है ना, तो उसके सामने किसका नाम लेंगे आप, हरि नाम निकलेगा वहां पे, और उन्हीं का ही पावन नाम निकलेगा वहां पे, हरि नाम नहीं होगा वहां, हरि नाम तो केवल यहीं पे उपलब्ध है, यहीं पे सुलभ है। फिर आगे बताते हैं, ना यत्र वैकुंठ कथा सुदापका न साधवो भगवत तदाश्रया ना यत्र यज्ञेश मख महोत्सवा सुरेश लोको अपि नव सेव्यताम। कि जहां पर हरी कथा की नदियां नहीं बहती, जहां पर भगवान के भक्त नहीं है, जहां पर भगवान के जो उत्सव है वो नहीं मनाए जाते, वहां पे लेने लोग उस ऐसे लोकों में रहने का क्या फायदा, वो तो नरक के समान है। कौन बोल रहे हैं, ये देवी देवता। तो वो लोग भी बड़े आतुर हैं इस भूलोक में आने के लिए और भगवान का नाम श्रवण करने के लिए, हरि नाम श्रवण करने के लिए, हरि कथा श्रवण करने के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं जहां पे भी श्रीमद् भागवतम का प्रवचन होता है देवी देवता भी आते हैं वहां पे और श्रवण करते हैं, पूरे 33 कोटी 33 करोड़ डेमीगॉड्स दे कम और आते हैं श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करते हैं। और इसका जो प्रूफ है स्वयं प्रभुपाद जी ने दिया। एक बार प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, नया नया वहां इस्कॉन स्थापित हुआ था, तो उनके जो शिष्यों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया वहां पे, बोले प्रभुपाद हम ऐसा करेंगे, इतना पब्लिसिटी करेंगे कि ये जो पूरा ऑडिटोरियम हम बुक कराया है, लगभग हजारों लोगों की कैपेसिटी थी उस ऑडिटोरियम की जो बुक कराया था उन्होंने, बोले प्रभुपाद पूरा ऑडिटोरियम भर देंगे और इतने सारे लोग आएंगे, वेस्टर्नर आएंगे और आपसे गीता का प्रवचन सुनेंगे वो। तो सब लोगों ने तैयारी करी, खूब पैम्पलेट बांटे वहां पे, खूब पोस्टर लगाए, बड़ी पब्लिसिटी करी, ऑडिटोरियम को बुक कराया, खूब प्रसाद बनाया। और फिर जिस दिन प्रोग्राम था, शाम को 7 बजे प्रोग्राम था, जब भक्त लोग पहुंचे वहां पे 6:30 बजे जो ऑर्गेनाइज करा रहे थे, तो देखा कि 6:30 बजे 5 लोग बैठे वहां आगे की लेन में। तो बोले ठीक है थोड़ी वेट करते हैं, लोग आ जाएंगे। तो 7:45 बजा तो 5 लोग और आ गए, तो 10 लोग बैठे, 10 लोग वो और 10 लोग जो ऑर्गेनाइजर थे, भक्त थे वो लोग। तब उनकी कांपने लगे वो लोग, नीचे से धरती निकलने लगी, बोले अब प्रभुपाद को क्या मुंह दिखाएंगे, इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, इतना पैसा लगाया हमने और यहाँ 20 लोग बैठे हैं, हालत खराब है। और 7 बजने लगा तो बस 2-3 लोग और आए बस। बोले ये तो बिल्कुल फ्लॉप शो हो गया, बोले आज वाट लगेगी हमारी जाके, रात को प्रभुपाद जी क्या बताएंगे हमें। कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। और 7:15 बजे वहां प्रभुपाद आए, तो तब तक 20-25 लोग थे मुश्किल से, सब लोगों ने आंखें बंद कर दी, प्रभुपाद को मुंह दिखाने लायक नहीं। बोले क्या करेंगे हम, कैसे प्रभुपाद को बताएं हम। प्रभुपाद आए वहां पर, आके व्यासासन पे बैठे, आके अपना 15 मिनट उन्हें प्रभुपाद ने कीर्तन किया और उसके बाद 1 घंटे का प्रभुपाद ने लेक्चर दी वहां पे। और लेक्चर देने के बाद प्रभुपाद अपने रूम में चले गए। अब जब सब भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद चले गए, बोले अब अच्छी से लगी क्लास हमारी, अब बताएंगे प्रभुपाद। और आगे जाके जब प्रभुपाद जी के रूम में पहुंचे, सब डर रहे थे, सब बोले थे आप जाओ आगे, आप जाओ आगे। तो फिर एक भक्त गया आगे और आके चल के जब प्रभुपाद के चरणों में गिर गया, जब वो गया तो पीछे से सब प्रभुपाद आगे, सब लोग प्रभुपाद को दंडवत मार रहे हैं और सब बोलते हैं प्रभुपाद प्लीज माफ करिए, प्रभुपाद प्लीज प्लीज वी आर रियली सॉरी, क्षमा करिए प्रभुपाद, बहुत बड़ी गलती होगी। प्रभुपाद बोले गलती होगी, क्या गलती करी हमने। बोले प्रभुपाद वो जो ऑडिटोरियम, बोले हाँ मैं आया तो था ऑडिटोरियम में, बोले कुछ गड़बड़ हुआ, मेरे से कुछ गलती हुई। बोले प्रभुपाद आपसे गलती नहीं, हमसे गलती हुई। बोले क्या गलती, बोले प्रभुपाद हमने इतना बड़ा ऑडिटोरियम कराया और जो पूरा ऑडिटोरियम था वो तो खाली था। प्रभुपाद बोले खाली था, बोले हाँ प्रभुपाद आगे बस 20-25 लोग बैठे थे, उसमें से हम लोग थे आधे तो। बोले प्रभुपाद बोले खाली था, अरे वहां तो सब लोग पूरा भरा हुआ था ऑडिटोरियम, आपको पता नहीं, आपको दिखा नहीं था क्या कि ब्रह्मा बैठे थे वहां पे, वो शिवजी बैठे थे, वो नारद आए थे वहां पे, इतनी सारी देवी आई थी, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। शिला प्रभुपाद की तो प्रभुपाद क्या देख पा रहे थे, पूरे ऑडिटोरियम में देख पा रहे थे कि वहां पे सारे देवी देवता हैं, प्रभुपाद जी का विजन था। तो इन देवी देवताओं को भी जो हरि नाम है वहां पे सुलभ नहीं है, अपने लोकों में, ऊपर के लोकों में उनको भी हरि नाम करना है, हरि कथा करनी है, तो यहाँ भूलोक में आना पड़ता है। तो इसलिए जहां पे भी हरि नाम लिया जाता है वो स्थान क्या बन जाता है, भगवान का धाम बन जाता है। धाम मतलब भगवान का निवास स्थान। और धाम अपना एक्सपेंशन किस में करते हैं, अपने भक्तों के रूप में करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक गीत में ए बार करुणा कर उसमें लिखते हैं, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि आपके हृदय में कौन विश्राम करते हैं, स्वयं गोविंद विश्राम करते हैं। किसके हृदय में, भक्तों के हृदय में। युधिष्ठिर महाराज जब मिले विदुर जी से, तो बोलते हैं विदुर जी को, बोले जहां जहां आप चलते हैं ना, जिस स्थान पे आप जाते हैं उस स्थान को आप धाम बना देते हैं। क्यों, क्योंकि आपके हृदय में तो स्वयं ठाकुर जी विराजमान है। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, तो यहां पे गोविंद विश्राम कर रहे हैं, तो जहां जहां आप गए तो वो स्थान भी क्या बन गया, गोविंद का विश्राम स्थान बन गया। और गोविंद का विश्राम स्थान क्या है, धाम है, वो धाम बन गया। एक बार गंगा जी विष्णु जी के पास जाती हैं और जाके कंप्लेंट करते हैं खूब, बोले क्या है आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, आगे देखो कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोग तो एक नंबर के डफर क्लास लोग हैं, थर्ड क्लास लोग हैं, इतना पाप करेंगे वो लोग, और पाप करने के बाद उनकी शुद्ध होने की भी इच्छा है, और फिर कहाँ आएंगे, सब आएंगे हरिद्वार मेरे पास और मेरे ऊपर डुबकी लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो ना अपना सारा पाप मेरे ऊपर गिर के फिर वापस चले जाएंगे, फिर दिल्ली में आएंगे फिर पाप करेंगे, फिर मेरे पास आएंगे हरिद्वार फिर पाप धोएंगे, तो दिल्ली हरिद्वार इनका चलता रहेगा, तो वो तो शुद्ध होके चले जाएंगे और मेरा क्या होगा, मुझे सारा मैला करके चले जाएंगे। कलयुग के लोग तो पूरे मोटिवेटेड है, बोले अपना काम निकालो और आगे चलो भाई। तो बोले मेरा क्या होगा फिर? तो ये कंप्लेंट करती है विष्णु जी को, बोले कुछ नहीं होगा। तो भगवान बताते हैं, बोले कलयुग में तो आपको पता है कि ऐसा स्वर्णिम युग आएगा, ऐसा स्वर्णिम जो अवसर आएगा पहले 10,000 सालों तक। तो उसमें क्या होगा, ये जो हरि नाम संकीर्तन है पूरे गली गली में कूचे कूचे में चला जाएगा ना। जा रहे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश ना, पृथ्वी ते आशियत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो नाम, कि भगवान के नामों का जो जो महिमा है हर जगह फैल जाएगी। तो केवल भारत के लोग नहीं, केवल पाकिस्तान के लोग नहीं, केवल अमेरिका के लोग नहीं, पूरे विश्व के लोग हरि नाम लेंगे जोर जोर से। और फिर वो क्या करेंगे, वो सब लोग आएंगे भारत भूमि पे, सब भारत भूमि में आएंगे और सब जाएंगे मायापुर में, और मायापुर में जाके वो जो गंगा मैया है वहां पे जाके सब क्या करेंगे, अपने पावों को डालेंगे। कौन? भगवान के भक्त, हरि के भक्त। और जब भगवान बोलते हैं कि जब ये सारे भक्त आपके आपके जो नदी में चरण रखेंगे अपने, तो क्या होगा, उनके चरणों से आप पवित्र हो जाएंगी। कि वो जो भगवान के भक्त हैं इतने कृपालु हैं और इतने शुद्ध हैं कि कोई गंदा भी होगा ना, मैला भी होगा, तो उसका भी मैल अपने ऊपर ले लेंगे और उसको भी प्यूरिफाई करेंगे। तो ऐसे हैं भगवान के भक्त, कि जहां पे भी वो जाएंगे वो स्थान क्या बन जाएगा, धाम बन जाएगा। तो देखिए प्रभुपाद जी हमारे पास साक्षात उदाहरण है इसके, है ना। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो कहां रह रहे थे उस समय, अमेरिका जाने से पहले भारत में कहां रह रहे थे बताइए? वृंदावन में रहते, धाम में रहते। उस धाम को भगवान प्रभुपाद जी साथ लेके गए, है ना। और कहां ले गए, अमेरिका में ले गए, और वहां पे जाके उस धाम को सबको दे दिया उन्होंने। तो ये है भगवान के शुद्ध भक्तों की महिमा, कि जहां जहां जाएंगे वो स्थान भगवान बन जाएगा। तो यहाँ पे ये वर्णन आ रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर भी बोलते हैं ना, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम रति कर मूल। क्या बता रहे हैं, शुद्ध भक्त चरण रेणु, कि जो शुद्ध भक्तों की जो चरण रेणु है, अगर ये आपको मिल जाए और अगर आपके पास भक्ति को अनुकूल करने की इच्छा जागृत हो जाए और भक्त सेवा, भक्तों की सेवा मिल जाए आपको, तो क्या होगा, आपके भक्ति का फाउंडेशन बन जाएगा, मूल है ना, मूल स्थापित हो जाएगा, भक्ति का बीज आपके हृदय में आ जाएगा, और उससे क्या होगा, भक्ति का बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। तो उसका फाउंडेशन केवल यही है, भगवान के भक्त, हरि के भक्तों का अगर हम संग कर रहे हैं तो हम धाम का संग कर रहे हैं। कई बार हमारी बहुत इच्छा होती है कि हम भागें, है ना। कुछ लोग हमें सुने, हम बोले कहाँ जाते हैं, बोले हर हफ्ते वृंदावन चले जाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने बोला, अरे आपको हर हफ्ते वृंदावन भागने की जरूरत नहीं है, वृंदावन तो यही है, जहां पे भगवान के भक्त एक साथ है वो स्थान क्या है, वही वृंदावन है ना। तो ये प्रभुपाद जी ने हमें क्या दिया, ये मंदिर दिए, यही वृंदावन है हमारे लिए, ये वैकुंठ से अभिन्न है, यहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्वयं भक्त है। तो हम आपको एक चीज शेयर करना चाहते हैं, ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है। इस्कॉन में आने से पहले हम बहुत सारे मंदिरों में गए थे, जाते थे, है कि नहीं, मगर कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं आता कि सचमुच में भगवान है। उस विग्रह तो है सामने, मूर्ति है, मगर हमें लगता नहीं था कि भगवान है, बस ये कि नहीं, कितने लोग ऐसे लगता था, फील नहीं होता था, मूर्ति तो सामने लग रही है, मगर जैसे ही हम इस्कॉन के मंदिरों में आते तो अरे सचमुच में लग रहा है ठाकुर जी सामने, ऐसा लगता है बस दर्शन करते रहे, इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बात करेंगे हमसे, अभी मेरी फीलिंग को वो जान रहे हैं। कई बार मैं दुखी होता हूं तो इतना, कई बार ऐसा लगता है कि वो भी थोड़े से दुखी हो रहे हैं, मगर एक मुस्कुराहट देते हैं अपनी और मेरे हृदय की बात जान लेते हैं, कुछ कुछ कनेक्शन तो है, क्यों ऐसा लगता है ना। विग्रह तो वही है, वो भी पत्थर के बने हैं, ये भी पत्थर के बने हैं, मगर यहां पर लगता है कि स्वयं ठाकुर जी हैं अपने सांगो पांगा से पार्षद, अपने पार्षदों के साथ। ऐसा क्यों फील होता है, क्यों? क्योंकि यहां पर हरि के भक्त हैं, हरि के भक्त जोर जोर से उनके नामों का उच्चारण कर रहे हैं, उनकी पुकार कर रहे हैं, और जहां पे पुकारा जाता है भगवान बोलते हैं मैं तो वहीं आऊंगा ना, जहां पे मेरी डिमांड है वहीं पे तो सप्लाई होगी, जहां पे मुझे बुलाया जा रहा है मैं आ जाता हूं वहां पे। और वहां पे कोई बुलाता नहीं है, बेचारे एक पुजारी है वो भी बड़ी मुश्किल से वो आरती दिखा रहा है वहां पे, है ना, ऐसा लग रहा है बस कब आरती खत्म हो, छुट्टी हो मेरी, प्रसाद मिलेगा मैं जाऊं, मगर यहां पे भक्त इतने मन से यहां पे भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, कितना सुंदर डेकोरेशन कर रहे हैं उनका, एक एक चीज क्या क्या भगवान ने कौन सा मोती पहनना है, कौन सी अंगूठी पहननी है, कैसे उनके वस्त्र होंगे, कैसी उनकी कला होगी आज, सब कितना डिटेल में यहाँ पे भक्त लोग निर्धारित करते हैं. डिटेल इज अ साइन ऑफ लव ना. और जितना डिटेल में जाते हैं वो क्या है, प्रेम का लक्षण है, उतने ज्यादा प्रेम निघर पे आ रहा है, उभर के आ रहे हैं. तो ये जो भक्तों का प्रेम ही तो है जो भगवान को आकर्षित करता है मंदिरों में. तो एक डिवोटी ने बड़ा अच्छा सेइंग बोला, बोले कृष्णा मैनिफेस्ट ओनली देयर वेयर द डिवोटीज आर देयर. मूर्ति तो है मगर भगवान उसमें अपना विस्तार नहीं करेंगे जब तक वहां पे भगवान के भक्त नहीं होंगे. तो यहां पे आप जोर जोर से हरि नाम ले रहे हैं तो ऊपर से भगवान देखते हो, अरे कौन है भैया पंजाबी बाग में बड़ी जोर जोर से हरि नाम ले रहे हैं, बड़ी जोर जोर से मेरा आह्वान कर. बोले हाँ यहीं पे जाऊंगा मैं, मेरा मन यहीं पे लगता है और कहाँ जाऊं, मेरी और कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मेरे भक्त यहीं पे है. तीसरी प्रकार ये जो आज के श्लोक में वर्णन आ रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं, अपना विस्तार कर दिया उन्होंने वसुदेव जी के हृदय में और वो स्थान क्या बन चुका है, वो धाम बन चुका है और वो भी स्वयं प्रकाशवान हो चुका है, प्रज्वलित हो चुका है, तेजस्वी हो चुका है. तो कई बार हम देखते हैं ना डिवोटीज भी हैं, उनके उनके चेहरे से बड़ा ही तेज निकल रहा है. तो क्यों तेज कहाँ का है, स्वयं कृष्ण का ही तेज है वो. कृष्ण हृदय में बैठे हैं और उनके हृदय से क्या हो रहा है, कृष्ण का तेज निकल रहा है. तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारे हृदय में भी भगवान स्थापित हो जाए, चाहते हैं हम भी अपने हृदय में भगवान को स्थापित करें. तो क्या फोकट में आ जाएंगे ना, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है. तो क्या करना है, तो यहां कृष्ण के आने से पहले कौन आए, बलराम जी आए, है ना. माता देवी की घर में कौन आए थे पहले, बलराम जी आए थे. तो बलराम जी क्या है, एक प्रकार के गुरु है. गुरु का कार्य क्या है, सब कुछ सफाई करना. गुरु मतलब हैवी, जो सब कुछ काट दे, है ना. क्या काट दे, हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं उसको काट दे, हमारे जो अनर्थ है उसको काट दे. तो सबसे पहले हमें तैयारी करनी है अपने हृदय में कृष्ण को बिठाने के लिए, पहले क्या करना है, सफाई करनी है. और सफाई का सबसे अच्छा तरीका प्रभुपाद जी ने हमें दिया है और वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. तो निश्चित है कि अगर अपने हृदय में हम हृदय से कृष्ण का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो कृष्ण भी हमारे हृदय में स्थापित होंगे, जिस प्रकार वसुदेव जी के हृदय में पहुंचे. हरे कृष्णा. किसी को भी प्रश्न है, कोई टिप्पणी है? हाँ जी पूजा. हरे कृष्णा.
प्रभु जी, हरे कृष्णा. आपने बताया नहीं यहाँ इस्कॉन में आने से पहले और वो मंदिर में जाने के बाद क्या होता, क्या फर्क लगता है आपको, आपने ये कहा ना,
चर्चा करी उसके में.
जैसे कोई क्रिकेट मैच या हॉकी मैच होता है, कमेंटेटर अच्छे से करता है ना तो जो ऑडियंस है बच जाता है एक साथ, मतलब बड़ा अंदर से बड़ा आनंद आता है. ऐसे ही यहाँ पर ऐसी ऐसी कभी कमेंट्री हो जाती है जैसे लीला में प्रवेश कर गए.
वेरी नाइस, बहुत अच्छा एग्जांपल है ना. बोले अब कोई आप क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, पूरा स्टेडियम में बैठे आप, मगर स्टेडियम में कोई जनता नहीं हो, आप कोई ताली बजाने वाला ने, कोई हूटिंग करने वाले ने, बोले यस 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 मारो मारो गोल 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 ये ना. तो उससे उत्साह आता है ना. जितने प्लेयर्स हैं, कई बार जैसे जिस मान लो आजकल क्रिकेट चलता है ना, मान लो चेन्नई वाले प्लेयर्स हैं और चेन्नई में मैच हो रहा है तो उनका उत्साह खूब हो जाता है. बोले हर जगह चेन्नई वाले हैं, सारे फैंस हैं, हर जगह उनका ना उनका उनको उत्साह बढ़ा रहे हैं वहां पे. तो इसी प्रकार भगवान को भी बहुत उत्साह मिलता है, उनके नाम को जब उच्चारण किया जाता है, भक्त सब मिलके जोर से बोलते कृष्णा कृष्णा, बोले कौन है भाई, कौन बुला रहा है ना. तो कृष्ण का बड़ा आकर्षण होता है. बोले हाँ ये मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मजा आ रहा है. जैसे आपका नाम क्या है, राधा रमन, राधा रमन प्रभु की, राधा रमन प्रभु की, राधा रमन प्रभु की. नहीं कितने खुश हो गए, नाम लेने से ही खुशी आ रही है अंदर, बड़ा अच्छा लग रहा है. अब सोचिए कोई नॉर्मल व्यक्ति का हम नाम लेंगे साधारण व्यक्ति में से, साधारण नहीं है, भगवान के बहुत शुद्ध भक्त है, मगर किसी का भी नाम लेंगे उसको कितना अच्छा लगता है, सोचिए भगवान का, परम भगवान का नाम लेंगे तो ही फील सो प्लेजर्ड, है ना। तो भगवान ने अपने आप को प्रसन्न करने की जो युक्ति है खुद से बता दी है, बोले मेरा नाम लेने से सबसे ज्यादा मैं खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। तो सबसे बड़ी सेवा क्या है कलयुग में? हरि नाम। इसलिए जब सब लोग भक्त लोग मिलते हैं, संकीर्तन होता है तो भगवान को और आनंद आता है, है ना। जब संकीर्तन किया जाता है तो भगवान को उसके जो आनंद का जो जो मैनिफेस्टेशन है, इंटेंसिटी है, और बढ़ जाती है, तो और खुश होते हैं भगवान। जब वो भगवान और खुश करते हैं तो भगवान भक्तों का संकीर्तन और लाउड हो जाता है, और इंटेंस हो जाता है, और प्रेम से वो संकीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार ये जो आनंद है बढ़ता रहता है हमेशा। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। हो गया।